प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1969। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी, फिर होते हैं वैश्य और शूद्रवंशी। अभी तो हम ब्राह्मण कुल में हैं, परंतु ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं है, और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो जानते हैं। 6/1/69 की वाणी का दूसरा पेज, क्योंकि माया बहुत कड़ी है, किसी को छोड़ती नहीं है। बाप को तो सभी मालूम पड़ जाता है, माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। ये बात बाप अच्छी रीति जानते हैं, ऐसे मत समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी से जानते हैं, बाकी अंतर्यामी होने की कोई बात नहीं है। तो कहेंगे अंतर्यामी नहीं है, बहिर्यामी है। और वेद के दो बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप। तो ये मनुष्यों का बाप बहिर्यामी है, उसमें निराकारी बाप प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, हर एक की चलन से सभी मालूम पड़ जाता है, बहुत ही छी-छी चलन चलते हैं। तो बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से अपने को संभालना है। माया ऐसी है जो कोई न कोई रूप में हप कर लेती है। फिर बल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठते हैं, क्योंकि माया ने पूरा ही निगल लिया। इसलिए बच्चों को तो बहुत ही खबरदार रहना है। ये काम तो महाशत्रु है, मालूम भी नहीं पड़ता कि हम काम विकार में गए। ऐसे भी होते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, कोई भी प्रकार की भूल को छिपाओ मत। छुपावेंगे तो 100 गुना पाप हो जाएगा, और एक बार पाप बन गया तो वो अंदर में खाता रहेगा, फिर वृद्धि होती रहेगी। और ऐसे करते करते एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा हो जाता है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, क्योंकि ये रावण की ही दुनिया है, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करेंगे, जहां हमको अभी जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये तो बेहद के मकान की बात है, तुम्हारे लिए बेहद का नया षष्ठी रूपी मकान बन रहा है। कहेंगे हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है, स्वर्ग में जरूर मकान भी होने के लिए रहने के लिए होंगे। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना ही गुलगुल फूल बनेंगे। अभी हम विकारों के वशीभूत होकर के कांटे बन गए। बाप जानते हैं माया आधों को तो एकदम हप कर जाती है, तुम भी समझते हो कि जो नहीं आते हैं तो वो माया के वशीभूत हो गए हैं। बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए, पुराने दुश्मन के पास चले गए। ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है। चित्र कितने बनाए थे, और अभी देखो कितने चित्र बनाते रहते हैं, लगावेंगे। और यहां तो बेहद की बात भी है, कौन इतना रोज रोज बैठ देखेंगे, क्योंकि कितने खत्म होते जाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा कह करके जाते हैं कि हम जाकर के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बोलते हैं हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज देखो तो वो है ही नहीं। सभी क्लासेस में से आधों को तो माया जरूर हप कर जाती है। तुम्हारी लड़ाई तो है ही माया के साथ। दुनिया वाले तो कोई ये बात जानते नहीं है कि माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। तो जरूर कहेंगे कि आसुरी संप्रदाय मायावी संप्रदाय हैं। फिर दिखाते हैं कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसे हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, और वो देवताएं होते ही सत्ययुग त्रेता में हैं। उनों की फिर असुरों से लड़ाई कैसे होगी? असुर तो कलयुग में होते हैं, कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। ये संगम युग की बातें हैं, जबकि बाप आते हैं तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों की शूटिंग चलती है। बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, परंतु ये कोई लड़ाई की बात तो नहीं है। कौरव और पांडवों का भी अर्थ नहीं समझते हैं। कौरव अर्थात कुरु की संतान, कुरु अर्थात करना, वो समझते हैं कि हम ही करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। पांडव पंडा के बच्चों को कहा जाता है। अभी तुम पंडा के बच्चे हो ना, शास्त्रों में जो लिखा है वो ही पढ़ते सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है, जब ये ज्ञान मिला तो ये विचार चला, गीता में ये जो लड़ाई आदि की बातें क्यों लिखी हुई है। और कृष्ण भी तो गीता का भगवान नहीं है, बाबा के हाथ में गीता थी, समझा कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा कैसे ज्ञान सुनाएगा। गुस्सा आया और गीता को एकदम फेंक दिया। अभी बाप तो तुमको बेहद की बातें सुनाते हैं, कि कृष्ण की आत्मा कैसे संगम में ब्रह्मा के रूप में बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है, क्योंकि मनन चिंतन मंथन तो चलता ही नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा कि ये झूठे शास्त्र कैसे बने, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा गीता को फेंकवा दिया, बोला अभी इसको इसमें कहने इस काम में नहीं लगाओ, नहीं तो सारी गीता ही पढ़ते आएंगे। अभी समझते हैं भक्ति में कितना अंधेरा है, बाप तो कितना सोझ रहा देते हैं, आत्मा कोई कह देते हैं आत्मा सुपरमात्मा, और बाप अभी कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो। वेद के बाप को याद करो, भक्ति में भी तुम याद करते थे, कहते थे आप आवेंगे तो हम बलिहार जावेंगे, परंतु कैसे बलिहार जावेंगे ये थोड़े जानते थे। अभी तुम समझते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे बाप भी आत्मा है। इनका है अलौकिक जन्म, तुम्हारा भी अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, तुम खुद कहते हो ये तो वो ही बाप है जो कल्प कल्प आकर के स्वर्ग बनाते हैं और हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं, वो ही बाप फिर टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी से शिक्षा भी लेनी चाहिए और बहुत गदगद होना चाहिए। अगर छी छी बने तो पक्का समझो कि खुशी नहीं आवेगी, खुशी गायब हो जाएगी। बल्कि कितना भी माथा मारो, बाप कहेंगे ये फिर हमारे जात भाई नहीं है। यहां कितने सरनेम होते हैं मनुष्यों के, वो सभी हद की बातें हैं। सरनेम तुम्हारा देखो कितना बड़ा है, तुम जानते हो बड़े से बड़े ग्रैंड फादर है ब्रह्मा, और तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ठहरे, परंतु इन ब्रह्मा को दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। और शिव बाबा को तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। 669 की वाणी का तीसरा पेज, कुत्ते बिल्ली में ठोक दिया है, ब्रह्मा का किसी को पता ही नहीं पड़ता है। चित्र तो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के, परंतु ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बायोग्राफी का कुछ पता ही नहीं है, सूक्ष्म वतन में फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आवेगा। प्रजा तो सारी सृष्टि की है, वहां प्रजा कहां से आई, वहां बैठ करके अडाप्ट करेंगे क्या। किसको भी इन बातों का पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा कहां से आया वो भी कुछ नहीं जानते। बाप ने समझाया है कि हमारा रथ है, मैं जिस रथ में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां आकर मैं रथ का आधार लेता हूं। और ये वो ही गीता का एपिसोड है, इसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है ये दुनिया में किसी को पता नहीं पड़ता। साधु संताजी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को, सभी धर्मों को भूल, एक बाप को याद करो। तो माया के पाप कर्म कैसे भस्म होते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप कर्म भस्म हो जावे। बाप तो पाप पुण्य से परे है ना, वो सन्यासी ऐसे कब नहीं समझावेंगे, क्योंकि वो तो बाप कोई नहीं जानते हैं, और ही अर्थ उल्टा सुलटा कर देते हैं, और फिर उनको लज्जा भी नहीं आती है। गीता में बाप ने कहा है, इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूं, क्योंकि ये सभी दुर्गति में हैं। जब सारी दुनिया दुर्गति में है तो फिर सदगति में कौन ले जाएगा। नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं, श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आगे तो टाइटल बिकता भी था, राय बहादुर आदि का टाइटल लेने में 50,000 भी दे देते थे। अब पैसों से जो चाहे सो मिल जाता था। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं शुरू से लेकर इस समय तक ये सब तुमको बताता आया हूं। अब ये अंत का जन्म है और यही ब्रह्मा बनता है। ये छोटेपन में गांवड़े का छोरा था, इसने 84 जन्म भी लिए हैं, फर्स्ट से लेकर के लास्ट जन्म तक इसने लिए। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल गया है, इस बात को तुम समझ सकते हो, धारण भी कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे तो बुद्धिहीन थे, अभी समझते हो कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, बुद्धिमान बाप का बच्चा हूं। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान सत्युग में थे, अभी बुद्धिहीन बने। तो सामने देखो कि लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे, जो कृष्ण स्वर्ग का मालिक था वो फिर अभी गांवड़े का छोरा बना है। तो तुम बच्चों को ये दान करके फिर पवित्र भी जरूर बनना है, क्योंकि इसे ज्ञान में मुख्य है पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा माया ने हमको गिराई दिया, पहले तो आंखें क्रिमिनल बनती हैं, फिर कर्मेंद्रियों से पाप कर्म हो जाता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बुद्धि में यही तात लगी रहे कि बस अब घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, ऐसे कर्म करते फिर हम चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगनी है और आगे चल करके तुम देखना कि ये लड़ाई कैसे लगती है। बुद्धि से समझते भी हैं कि हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया जरूर चाहिए, तो जरूर ये पुरानी दुनिया खलास होगी, इसलिए विनाश भी जरूर होगा। अभी तो हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं और श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा थोड़े ही नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाबा तो रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं। बाबा कोई पति थोड़े ही है जो योग लगा करके पावन बनेंगे, नहीं। तुम बच्चे पतित बन पावन बनते हो, तुम ही पावन दुनिया बनाते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं, तुमने मांगने की है कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहा कि आकर ज्ञान सुनाकर चले जाओ, नहीं, पावन बनाने के लिए जरूर आना पड़े। तो तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूं, तुमको रास्ता बताता हूं, बहुत सहज रास्ता बताता हूं। कहता हूं मन मना भव, भगवान वाचे मन मना भव, परंतु गलती सिर्फ एक ही की है, क्या? गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप के नेक्स्ट प्रश्न को रख सकते हैं। बाप तो परम नाम का मालिक है और ये कृष्ण तो विश्व का मालिक है, बाकी सूक्ष्म बतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर वन है श्री कृष्ण। शिव बाबा तो कोई नंबर में आता नहीं है, तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रखना चाहिए। तुम जानते हो कि सब तो स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो तुम्हारे अंदर ओरिजिनल खुशी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर की दुनिया से किस्म किस्म के बाबा के पास आते हैं, वो कब पवित्र नहीं रह सकते। बाबा उनको समझाते भी थे, तुम विकार में जाते हो फिर यहां आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करें, मैं रह नहीं सकता हूं, रोज जाता हूं परंतु यहां भी आता हूं, शायद मुझे भी कोई तीर लग जाए। आप बिगड़ हमारी सदगति कौन करेगा, तो आकर के बैठ जाते थे। बाबा जानते हैं माया कितनी प्रबल है, उनको निश्चय भी होता है बाबा हमको पथ से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। फिर भी बाबा ये तो जानते हैं कि ये सच तो बोलता है, अभी वो जरूर सुधर गया होगा। उनको ये निश्चय था कि इनके द्वारा ही हम सुधरेंगे। अभी अगर मैं दिल्ली में जाऊं और सभा में पूछूं कि वो कौन था, तो वो निकल भी आवेंगे, होवे या न भी होवे, अनेक प्रकार के फीचर्स होते हैं। इस समय दुनिया में कितने एक्टर्स हैं, एक का फीचर न मिले दूसरे से, फिर कल बाद यही फीचर्स आवेंगे, पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सभी फिक्स हैं, 500 करोड़ एक्टर्स हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, सभी आत्माएं अविनाशी और उनमें पार्ट भी अविनाशी नुधा हुआ है। तो देखो कितनी समझने की बातें हैं कि भिन्न भिन्न पार्टधारियों में ये अविनाशी पार्ट अलग अलग कैसे नुधा। इतना समझाते हैं फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। अब हर कल्प राजा ही तो स्थापन होती ही है, सतयुग में तो थोड़े आते हैं, सो भी नंबर बार, एक का पार्ट दूसरा तो जान नहीं सकता, मिल नहीं सकता। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है, आठ 169 का गायन है इधर। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, ये कब का गायन है और इसका बेहद में अर्थ क्या है? शास्त्रों में तो लिख दिया है यहां की बात, ये एक दृष्टांत है, बाकी वहां कोई ऐसा होता नहीं है, ये दृष्टांत बनाया हुआ है। तो तुम बच्चों को भी ऐसे प्रेम से रहना चाहिए, बिल्कुल शांत। जब ऐसे शांति स्थापन हो जाएगी तो इसका नाम रख देंगे टावर ऑफ साइलेंस। अभी हम जा रहे हैं टावर ऑफ साइलेंस में, फिर उसके बाद कहां आवेंगे? टावर ऑफ साइलेंस के बाद आवेंगे टावर ऑफ सुखधाम में। तो शांति धाम और सुखधाम, ये दोनों हाईएस्ट टावर हैं। यहां देखो कितने अशांत दुखी हैं, इसलिए इनको नरक और हेल कहा जाता है। तुम तो हेवन स्थापन कर रहे हो, तो जरा भी आवाज नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में तो कितना किचड़ा है, यहां तो बाकी थोड़े समय हैं। इस किचड़े के विनाश की तैयारियां हो रही हैं। गड्ढा खोदते रहते हैं, फिर फटेंगे। अभी तो देखो कितना झगड़ा मारा मारी है, जैसे कि इस दुनिया में कोई सेफ नहीं है। जेल में ऐसे जाते हैं जैसे कोई उनके नाना का घर हो। आज प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कल जेल में सजा खाते हैं। मुंह में गोली लगती है। यहां तो तुम अभी किनारे पर बैठे हो नई दुनिया में जाने के लिए। बोलो, भारत में शांति थी जबकि एक धर्म एक राज्य था, अभी तो चारों ओर अशांति ही अशांति है, क्यों? अनेक धर्म और अनेक राज्य है, कितनी अशांति है। फिर भी अभी फिर से शांति का राज्य होने वाला है। बच्चे समझते हैं हम निमित्त बनते हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, तो जो निमित्त बनते हैं उनको तो बहुत शांति में रहना है। सदा शांति धाम सुखधाम की याद में रहना है और सभी को रास्ता बताना है। सुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो, ये सुख की दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई को पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में है कि सुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी सतयुग त्रेता में, उनको 2500 वर्ष हुए और सुख की इसी जियोग्राफी 2500 वर्ष चलती है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष दुख की हिस्ट्री जियोग्राफी, फिर आकर के बाप नई दुनिया बनाते हैं। तो तुम बच्चों की है सुख की हिस्ट्री जियोग्राफी। भक्ति मार्ग में कितने चर्याई धक्के आदि खाते रहते हैं। तुम बच्चों की तो एक ही बात है, तुम अभी रावण राज्य में हो तो बाप को याद करना है ताकि तुम्हारी बाप कट जावे और राम राज्य में चले जाओ, क्योंकि तुमको तो पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। फिर यहां कोई भी पापात्मा नहीं रहेंगे, पावन दुनिया में कोई पापात्मा नहीं होता, और पावन दुनिया में सब पवित्र आत्माएं होती है। अभी तुम ब्राह्मणों का सारी दुनिया में नाम बाला होने वाला है, सभी योगबल से अपना सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां के सुख शांति के राज्य में दुख का नाम नहीं होगा, तुम्हारे सिवाय दुनिया में सब की हद की बुद्धि है। तुम्हारी तो कितनी बेहद की बातें हैं, और तुम्हारा बुद्धि योग लगा रहता है शांति धाम से, समझते हो अभी शांति धाम होना है, ये दुखदाम कलाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रहे तो बहुत खुशी होगी। नहीं तो सजा के लायक अपने को बना देंगे, कभी भी अपन को सजा के लायक नहीं बनाना है। ये सपूत बच्चों का काम है, ज्ञान की मीठी मीठी बातें आपस में करते रहो, नहीं तो कल्प के लिए बहुत घाटा पड़ जाएगा और अनेक कल्पों के लिए घाटा पड़ेगा। अच्छा, अपन को अच्छी रीति संभालना है। ओम शांति।